Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai. Aaj ke ank mein desh videsh ki aarthik gatividhiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par ek nazar dalenge aur charcha karenge. Charcha ke liye aaj hamare studio mein aamantrit hain varishth aarthik patrakar Puneet Jain. Puneet, karyakram mein aapka swagat hai.
Dhanyawad Amit.
Sabse pehle ek nazar aaj ki aarthik surkhiyon par, to angrezi mein headlines ke saath Anubha.
Thank you, Amit. Sensex hits fresh all-time high, surges nearly 1,700 points. Nifty closes at 23,290. RBI keeps repo rate unchanged at 6.5% for the eighth time in a row. And oil prices steady on OPEC plus reassurances, still set for third weekly loss.
आर्थिक सुर्खियों में सेंसेक्स 1700 अंक के उछाल से नए ऊंचे स्तर पर दर्ज. निफ्टी भी 23,290 के स्तर पर दर्ज हुआ. रिजर्व बैंक ने लगातार आठवीं बार रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा और कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट का रुख. सबसे पहले नजर डालते हैं शेयर बाजार पर. लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांकों में मजबूती का दौर रहा. रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में रेपो रेट दर को बरकरार रखने का बाजार पर सकारात्मक असर रहा. इस बीच नई सरकार के गठन से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार का दावा पेश किया है और हम इस समय सीधे जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन से.
अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे तो 18वीं लोकसभा और वैसे भी हमारे यहां व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है. एक नए कालखंड में प्रवेश करता है 3 वर्ष समाप्त करके. ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है. और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है. साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है.
आप सुन रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी कर दिया है. अब वापस से अपने शेयर बाजार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं. लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मजबूती का दौर रहा. रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में रेपो दर को बरकरार रखने का बाजार पर सकारात्मक असर रहा. मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 2.2% की बढ़त से 1,619 अंक उछलकर नए सर्वाधिक स्तर 76,693 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2% मजबूती से 469 अंक बढ़कर 23,290 के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ. बीएसई मिडकैप सूचकांक में 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2% की बढ़त दर्ज हुई.
Indian benchmark indices closed higher for the third straight session, with the Sensex touching a fresh all-time high today, following the RBI's decision to keep the benchmark repo rates unchanged. The 30-stock BSE Sensex, which opened at 75,032, climbed in the afternoon session to touch its all-time high of 76,795 in intraday trade. At close, the Sensex was at 76,693, up 1,619 points or 2.16%. Similarly, Nifty, which opened flat at 22,822, climbed to an intraday high of 23,320, only 18 points short of its all-time high. At close, the Nifty 50 was at 23,290, up 469 points or 2.05%. All the sectoral indices ended in the green, with auto, IT, power, telecom, metal soaring 2-3%. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 1.2%, while the small-cap index rose 2%.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 14 पैसे की मजबूती से 83.39 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स मामूली बढ़त से 104 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पुनीत, अगर हम 4 तारीख के दिन को याद करते हैं, जो इस सप्ताह का दूसरा कारोबारी सत्र था, उस दिन बाजार की जो दिशा थी वो इतनी जल्दी अपने बाजार पूरे मूड में आ जाएगा या उसको रिकवरी कर लेगा, ये शायद सोचना भी उस दिन मुश्किल था। लेकिन आज के दौर में अगर बाजार इतनी मजबूती दिखा रहा है तो इसके पीछे कौन से प्रमुख कारण, एक सेंटिमेंटल कारण ही है या कंपनी जगत के जो प्रदर्शन था वो तो है ही है? और हालांकि आज एक और बड़ी खबर है, रेपो रेट, जो रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बरकरार रखा है।
तो देखिए अमित, ये जो सप्ताह जो अभी खत्म हो रहा है, कारोबारी सप्ताह, वो मुझे लगता है एक ऐतिहासिक सप्ताह है, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर। और उसको अगर बाजार के उसमें भी देखें तो उतार चढ़ाव का जो एक माहौल था वो भी मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक सप्ताह रहेगा, क्योंकि शुरुआती दौर में मंडे को बड़े अच्छे बढ़त थी, ट्यूसडे को बहुत अनसर्टेनिटी थी, बड़ी गिरावट देखी, 8% से ज्यादा हमने गिरावट देखी थी इंट्राडे, उसके बाद लगातार बाजार में तेजी आई। तो एक मुझे लगता है कि एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एक मूव्स बाजार में रहे, पर खैर बॉटम लाइन ये है कि इट एंडेड एट हिस्टोरिक हाई, ऑल टाइम हाई पे बाजार बंद हुआ। आपने उसके कारण, मुख्य कारण देखिए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक सिग्नल आया इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की जो पॉलिसीज इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे रही थी, जो भी एक सरकार के प्रोग्राम थे वो चलते रहेंगे, उसमें कोई डिसरप्शन नहीं हुआ। ये एक सबसे बड़ा मुझे लगता है कि मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव संदेश था। और उसके साथ जो आज आरबीआई ने अपने जो कमेंट्री रही, हालांकि कोई बड़ी बदलाव नहीं किया आरबीआई ने, लेकिन आरबीआई ने जो उम्मीद बनाई कि आगे आने वाले समय में और बेहतर होगा इकोनॉमिक आउटलुक, उसको चलते फिर मुझे लगता है कि जो बाइंग हुई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस सप्ताह, उन सबका मिला जुला हम असर देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल पर बाजार बंद हुआ है। इट शोज ऑप्टिमिज्म इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि ये तो ब्रॉड लेवल पर मैसेज।
पुनीत, एज वी सी दैट ऑल सेक्टरल इंडस्ट्रीज एंडेड इन द ग्रीन टुडे, एंड आई वांट टू टॉक यू स्पेसिफिकली अबाउट आईटी सेक्टर, बिकॉज दैट्स वन सेक्टर दैट हैज बीन यू नो इन द रेड एंड इट्स नॉट बीन डूइंग सो वेल। सो व्हाट हैज चेंज फॉर द आईटी सेक्टर? वी हैव बीन रीडिंग यू नो न्यूज अबाउट यू नो मेजर डील्स बीइंग you know that some major companies, IT top IT companies in the country have you know made deals. So is that one also one of the reasons?
So Anubha, broadly speaking, in fact, you're right. I mean, in last many months when there was a big rally in the stock markets, IT sector stocks were underperforming.
Yes.
So I think one thing happened was that they became relatively undervalued vis-a-vis the other pockets of the market. So that is one, I think, positive factor going for IT companies. And like you mentioned, the numbers, the quarterly numbers that we saw from IT sector, they were stable. They're not growing rapidly, but they are stable. And even when the global economic environment is likely uncertain, yes, and not that positive, but IT sector stocks continue to do well. So companies are doing well. So my belief is that markets were really hunting for value today. And like yesterday, if you see, the market went up because they bought FMCG stocks.
Yes.
So all the FMCG stocks were rallying yesterday, which where the value was. And today, I think money shifted to IT sector stocks, which are relatively cheaper. So basically, this is a market looking for you know, value in the stocks. And that's why it happened.
पुनीत, आपने कहा कि कल जो बाजार था वो एफएमसीजी सेक्टर्स पे फोकस था, आज आईटी सेक्टर पे फोकस है। क्या अभी इन सब चीजों के पीछे दो चीजें मानी जाए कि बाजार में चूंकि वैल्यूएशन इतनी अच्छी हो गई थी वो कहीं ना कहीं निवेशकों को लुभा रही थी, इस वजह से सब सेक्टर्स में हुआ, या ये माना जाए कि इस तरीके की क्योंकि कुछ एक पूर्वानुमान है कि चूंकि ये सरकार मिलीजुली सरकार है और पिछली बार की तरह से शायद कुछ मायनों में अलग होगी, तो सरकार लोक लुभावन कार्यक्रमों में शायद ज्यादा ध्यान देगी या ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देगी, इसलिए एफएमसीजी क्षेत्र पे ज्यादा जोर है या शेयरों पे ज्यादा तेजी है, या चूंकि वैल्यूएशन इतने अच्छे थे कि वो किसी को भी लुभा सकते थे?
देखिए, मुझे लगता है कि अभी कोई पॉलिटिकल जजमेंट मार्केट नहीं कर रही है। बेसिकली मार्केट का ये मानना है कि जो आउटकम है, जो मार्केट जो भी मैसेज है, जो सरकार बन रही है, जो कंटिन्यूटी इन पॉलिसी है, उससे मार्केट को लगता है कि जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी चल रही थी जिसमें निवेशक को कॉन्फिडेंस था वो चलती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। और आपने जैसे मेंशन किया कि कोलिशन गवर्नमेंट होगी, ये हालांकि जो लीडिंग पार्टी है उसके बहुत नंबर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कोलिशन, जो नॉर्मल कोलिशन देखते हैं जहां पर इनस्टेबिलिटी होती है या अनसर्टेनिटी होती है, शायद इस सरकार में वो सब
दबाव नजर नहीं,
दबाव नहीं होगा। उसके बावजूद भी अगर हम कोलिशन गवर्नमेंट की हिस्ट्री देखें, जो 90s में हमने कोलिशन गवर्नमेंट देखी और इवन 2004 से 2014 देखी, तो वहां पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बावजूद भी मार्केट्स की और इकोनॉमी की हालत वहां पर भी फिर भी ठीक थी। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतनी अनसर्टेन, मार्केट इतनी वरिड है, और पर्टिकुलरली इस जो अभी जो सरकार का जो आयाम है वो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव है। तो अभी तक मुझे लगता है ब्रॉड मार्केट इज टेकिंग रिलीफ कि ये बिल्कुल कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, कंटिन्यूटी रहेगी, मुझे लगता है इस बात को लेकर सांत्वना
और राजनीतिक घटनाक्रम के प्रति बाजार पूरी तरह से आशान्वित है और सिर्फ किसी तरह की कोई चिंता नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो
अच्छा। अब एक और चीज, जो बाजार में जो गिरावट आई उसके बाद जो ये बढ़त चल रही है या लगातार खरीदारी चल रही है, इसमें कौन कौन से मुख्य कारण है? क्या घरेलू निवेशक या घरेलू संस्थागत निवेशक जो DIAs हैं, या इसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी वापस से अपना मूड बनाया है?
बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जो हमने देखा कि इन द रन अप टू इलेक्शंस जो FIIs थी वो थोड़ा सा सेलिंग कर रही थी, वो थोड़े एप्रिहेंसिव थे, बल्कि उनके थोड़ा वायदा बाजार में भी थोड़े शॉर्ट पोजीशंस थी और वो इतने पॉजिटिवली उन्होंने बाइंग नहीं करी थी। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो थे, एक तो रिटेल इन्वेस्टर खुद और साथ में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सबने मिलकर काफी अच्छी निवेश किया बाजारों में, काफी कॉन्फिडेंस था। और अभी हमने देखा इस सप्ताह थोड़ा वॉलेटिलिटी रही है FIIs के बिहेवियर में, बट आज अगर आप आंकड़े देखें तो आज FIIs की बाइंग हुई है और घरेलू जो निवेशक हैं या म्यूचुअल फंड हैं उनकी थोड़ी सेलिंग आई है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर जो लोग पीछे जो साइडलाइंस पर बैठे थे पैसा लेकर, द मनी विच वॉज सिटिंग ऑन द साइडलाइंस, वो पैसा वापस, दे डोंट वॉन्ट टू मिस द बस, तो वो शायद मार्केट में वापस आ रहे हैं। और जहां पर जिन इंस्टीट्यूशन में बहुत प्रॉफिट आ रहा है वो शायद प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं।
Vineet, you know, you're talking about the volatility that was there in the markets prior to the results, but obviously, apart if we look at only, I mean, you know, Tuesday when the markets tanked, after that, it's been on up and up. So are you saying, I mean, I'm asking from a, you know, investors, a retail investor's point of view, are they looking at, you know, time ahead when there's going to be little less volatility? Or do you think the political equation, because again, a lot depends on the kind of coalition government it is, but the nature of this coalition government is going to be a little different because of the numbers. So
Anubha, my own guess is that political equation is now out of the market's mind.
Okay.
So the market was worried about it for the last many months, and there were all kinds of apprehensions. But once this week is over, I think markets will once again focus on the economy and the policies. And we should not forget that after about a month or so, we're going to have another very big event, yes, which is the annual budget. So we'll have a full budget, and a lot of new policies, I'm sure, will come forth. So market, I think, is now is going to refocus away from the political spectrum. They're going to look at the budget and the upcoming economic events and economic growth. So I think this is going to change now.
Puneet, इसी के साथ एक चीज, जिस तरह से आपने बताया कि जो पूर्ण बजट सरकार लाएगी उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था को या आर्थिक जगत को एक नई दिशा का आभास होगा, पता चलेगा कि क्या सरकार करने जा रही है। उद्योग जगत और आपके जैसा एक जो वित्तीय विश्लेषक या आर्थिक विश्लेषक है, उनको कितनी उम्मीद है कि सरकार इस बार जो पिछले दौर के उसके जो लगातार जैसे आते थे, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने 100 दिवस का कार्यक्रम रखा, दूसरी बार भी वो 100 दिन का टारगेट रखे, इस समय उनके पास कौन से ऐसे प्रमुख कारण होंगे आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड?
देखिए अमित, जो खास बात है और मुझे क्या लगता है कि जो रियली मैं कहूंगा ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये स्टैंड आउट करती है वो है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की गई है बहुत बड़े पैमाने पे। अगर आप रोड्स को देखें, अगर आप रेलवेज को देखें, तो कई गुना वहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ी। चाहे हम थर्मल पावर कैपेसिटीज को ले, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें, तो वहां पर जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर था कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद, वो बहुत कई गुना बढ़ा और उसी वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था उसको मजबूती मिली। ये बहुत जरूरी है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना नहीं बढ़ पाया, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कैपेक्स में, और अभी भी मुझे लगता है कि वो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना तेजी से हम नहीं बढ़ा पाएंगे शायद, तो क्योंकि बैलेंस शीट जो है प्राइवेट सेक्टर की उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे बढ़ता रहे वो एक बहुत, उसके लिए जो पॉलिसीज हैं, जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो आने वाला बजट है वो बहुत क्लियर हमको एक इंडिकेशन देगा कि गवर्नमेंट आने वाले समय में कौन सी पॉलिसीज, क्या वो उसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करेंगी, या वो हो सकता है, जैसे आपने कहा कि कुछ पॉपुलिस्ट मेजर हो सकते हैं, वहां पैसा डाइवर्ट होगा। तो बाजारों का जो फोकस है या इकोनॉमी का जो फोकस है वो इन सवालों के ऊपर है, और मेरा भी ये आई विल बी क्यूरियस टू नो कि गवर्नमेंट कैसे नई डायरेक्शन।
लेकिन जो बाजार के जो नंबर हैं, खासतौर पर अगर आर्थिक जगत की जो नंबर हैं, शेयर बाजार के जो नंबर हैं, क्या ये बताने के पर्याप्त कारण है कि बाजार पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो ग्रोथ स्टोरी है वो और तेज होगी, उसमें कहीं रुकावट या व्यवधान नहीं आएगा?
बिल्कुल, देखिए बाजार को भी ये पूरा कॉन्फिडेंस है, और जैसे आज आरबीआई के जब गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने कहा कि भाई 7 के बजाय हम थोड़ा अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, 7.2% जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और आने वाले समय में इन्फ्लेशन की भी वो, तो ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है, इन्फ्लेशन कम होने की उम्मीद है, विच इज गोल्डीलॉक्स, मतलब बहुत अच्छा एक वो है, कॉम्बिनेशन है। तो उससे आप देखेंगे बाजार में आज बड़ी तेजी वहां से पकड़नी शुरू करी। तो क्लियरली बाजारों की जो वोट है वो तो सरकार की जो पॉलिसी कंटिन्यूटी है उसकी तरफ 100% है। तो फिलहाल बाकी देखिए बजट में क्या होता है।
आपने चर्चा करी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने क्या कहा, तो हम उसी खबर को ले लेते हैं। रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार रेपो दर 6.5% में बरकरार रखा है। इसी के तहत स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी एसडीएफ दर 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमसीएफ दर 6.75% पर अपरिवर्तित रखा है। मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने इस आशय के पक्ष में मत रखा, साथ ही बाजार में पूंजी में कमी रखने के उपाय जारी रखने पर भी सहमति दी, जिससे मुद्रास्फीति को 2 से 6% के दायरे में रखने में मदद मिले। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5, 6 और 7 जून को हुई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मुद्रास्फीति लगभग नियंत्रण में है। सरकार ने रिजर्व बैंक से खुदरा मुद्रास्फीति की दर 4% के दायरे में रखने का निर्देश दिया था, इसमें 2% तक के उतार चढ़ाव की संभावना हो सकती है। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति सामान्य मानसून की संभावनाओं के बीच खाद्य मुद्रास्फीति में बदलाव पर भी नजर बनाए रखेगी। रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है।
पुनीत, यू नो आरबीआई डिसीजन टुडे, द एमपीसी एक्सपेक्टेड लाइन्स, इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट यू नो दे विल कंटिन्यू टू कीप द रेपो रेट एट 6.5%। What I want to ask you is that this decision that has come out, it was a 4-2 majority. 2 members dissented, they opted, they voted for a, you know, to begin the rate cut cycle, and they also, you know, asked for a change in the stance from accommodative to neutral. What does that indicate?
So interesting, you're right. I mean, I think the most significant takeaway from the RBI meet today was this point, where 2 members of the MPC, they dissented and they wanted the rate cuts to happen now. Yes. And both of these 2 members are actually the external members, yes, of the MPC. And while the RBI members were still in favor of continuing the current high interest rates. So clearly, I think going forward, one of the clear messages from this MPC is that I think by the last quarter of the year, which is basically October, November, December, we are definitely going to see 1 interest rate cut. I'm hopeful of 2 interest rate cuts. And market was looking at 3, but I guess if I look at the commentary from the RBI governor, yes, maybe there'll be 2 cuts this year. And so it will be a mild rate cut cycle. It may not be very aggressive rate cut cycle. But my sense is that RBI is signaling that they are now ready and they are comfortable with the growth projections, they are comfortable with the inflation projections, and they are saying that, okay, now we are ready to cut rates in the next 3 to 6 months, which is again good news for the economy.
Reserve Bank ke governor ne do cheezon pe bhi aaj apni जो उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया उस पर दो चीजों पर भी बात की कि जो जीडीपी के उनके संभावित आंकड़े हैं उसको 7% से बढ़ा के 7.2% किया, ये कितना लाइन के हिसाब से है। दूसरा जो एक बड़ी बात है कि लिक्विडिटी क्रंच को, लिक्विडिटी बाजार में जो है उसको उन्होंने थोड़ा सा उस पर टाइट करने की बात करी है कि रिजर्व बैंक जो है अपनी इसी नीति के दायरे में बनाए रखा। क्या आपका भी ऐसा मानना है कि फिलहाल की परिस्थितियों में बाजार में लिक्विडिटी पर्याप्त या उससे ज्यादा है?
देखिए आरबीआई, मैं ये कहूंगा कि लिक्विडिटी अब बहुत ज्यादा नहीं है। आरबीआई डेलिबरेटली पिछले कई वर्षों से, अब कई समय से आरबीआई एक डेफिसिट लिक्विडिटी सिस्टम में मेंटेन कर रहा है, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उनका पहला एक टारगेट था। तो आरबीआई ने करीब पूरे कई क्वार्टर्स से एक लिक्विडिटी डेफिसिट रखा है बैंकिंग में। अगर आप देखें तो बैंक्स में भी जो डिपॉजिट रेट्स हैं, जो डिपॉजिट आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ उससे ज्यादा है, तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो भी थोड़ी नीचे आई है, तो थोड़ी बढ़ी है, बिकॉज डिपॉजिट हमारे थोड़े कम हो रहे हैं। तो क्लियरली ये बात सामने है कि लिक्विडिटी आरबीआई ने टाइट रखी है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आरबीआई इस मॉनिटरी टाइटनिंग से जीडीपी ग्रोथ को कम होता हुआ नहीं देख रहा। इनफैक्ट 7 से 7.2, आपको लगेगा ये 20 बेसिस पॉइंट तो बड़ा मामूली सा फर्क होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी अर्थव्यवस्था 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की जहां साइज होता है तो 0.2%
बहुत बड़ा
डिफरेंस, तो इसलिए वो एक और एक कॉन्फिडेंस भी जताता है ये कि हमारा इन्फ्लेशन कम आने के बावजूद हम जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि रियल जो ग्रोथ है वो आपकी उससे बढ़ती है।
हाँ पुनीत, लेकिन आपने जैसे बात करी इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की, आमतौर पे बरसात के दिनों में यानी मॉनसून के सीजन में मौसमी मुद्रास्फीति या मैं कहूं खाद्य मुद्रास्फीति पे खासतौर पे काफी असर पड़ता है। क्या रिजर्व बैंक भी इस मुद्दे पर उसी तरीके से सोच रहा है कि इस अगर यहां पे तात्कालिक तौर पे ही सही अगर कुछ मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वो उसने उस अकाउंट फॉर किया हुआ है?
बिल्कुल, तो अगर आप इन्फ्लेशन के डेटा देखेंगे तो इन्फ्लेशन के डेटा में जो कोर इन्फ्लेशन है वो कम है और फूड इन्फ्लेशन जो है वो उसकी हाई फिगर है। तो आरबीआई इस बात को समझता है, नेचुरली उस बात को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इससे पूरे जागरूक है और उनका जो आंकड़ा जो प्रोजेक्ट किया उन्होंने की 4.5% इन्फ्लेशन वो शायद वो अचीव कर लेंगे।
जी, मूविंग ऑन, द रिजर्व बैंक हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर एमडी एंड सीईओ of National Payments Corporation of India, Mr. A.P. Hota, to examine various aspects of setting up a digital public infrastructure for digital payments intelligence platform. The RBI said that even though the payment ecosystem, which includes banks, NPCI, card networks, payment aggregators and payment apps, take various measures on an ongoing basis to protect customers from digital frauds, there is a need for network level intelligence and real time data sharing across payment systems to prevent such frauds in the future. Puneet, your comment on this, a very important step, a very important decision, proposal that the RBI has made to set up a digital public infrastructure, especially, you know, given like we're talking about this frauds, which are the digital frauds that are increasing by the day.
So Anubha, clearly, in fact, RBI governor had earlier also stated that they will now focus a lot on proactive steps by the institutions, by banks, by RBI, to prevent frauds. So right now we only rely on customers,
yes,
to be alert against such frauds. But I think RBI is putting in infrastructure to prevent frauds at origin itself.
नजर डालें थे शेयर एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मिलाजुला दौर रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% और चीन का शांघाई कंप्यूटर सूचकांक, हांगकांग का हैंगसेंग, जापान का निकेल लगभग पूरी स्तर पर बने रहे। सिंगापुर का स्टेट टाइम सूचकांक भी पूरी स्तर पर बना रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरूआती रुझानों में गिरावट का दौर रहा। जर्मनी, फ्रांस और लंदन के शेयर सूचकांक 0.5% से 0.8% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
Moving on to the US market, stocks closed mixed in the US yesterday after the European Central Bank cut rates for the first time in 5 years, and as investors looked ahead to today's monthly jobs report to help gauge the strength of the US economy. The S&P 500 shed over 1 point or less than 0.02%, while the Nasdaq composite lost 0.9%, and the Dow Jones Industrial Average added 79 points or 0.2%, ending at 38,886. Puneet, Amit just said that the European markets ended in red. Do you think that's probably what happened with the ECB now going in for a rate cut?
Absolutely, Anubha. In fact, while conventional wisdom says that when you cut rates, markets go up,
yes,
the truth is we have observed that rate cuts come when economy is slowing down.
Yes.
And if economy is slowing down, then typically markets will not react positively. And that's what it seems to have happened in Europe.
It's not just Europe. The Swiss Central Bank, the Canadian Central Bank, even the Swedish Central Bank, they've already, you know, started their rate cut cycles. And so it's obviously it's to do with their local conditions, with their conditions in those particular, you know, nations prevailing at the moment. Because when we talk about the rate cut cycle, like today, even the governor, Shaktikanta Das, said, you know, again, he's been saying it for so long that please don't think, you know, that the RBI is, you know, follow U.S. Fed policy.
Absolutely.
Right? And he also drew a cricket analogy in that. So, is it, but given the fact that we live in a global village right now, the economic, global economic conditions, you know, they affect every economy in the world. So, can we just, you know, say that we are not going to follow a particular or the world's biggest economy and decide on our own?
So, Anubha, it's a very interesting point you've raised, and it's a much larger point, in fact. Unfortunately, we can't discuss it in details. But the truth is that the world has been decoupling somewhat in the last couple of years. See, earlier we were all moving in the same direction. But if you look at the world economy, so Europe was in recession last quarter, but US was growing very rapidly. So clearly there's been a decoupling in global economy, and that is what we are now witnessing, even on the global scale, as far as monetary policy is concerned.
Moving on to commodities, oil prices steady today as OPEC Plus members Saudi Arabia and Russia indicated readiness to pause oil output increases, but crude was still headed for its third straight weekly loss on demand concerns. Brent futures for July delivery were up by 0.61% at $80.37 a barrel, while the U.S. West Texas Intermediate WTI crude futures gained 0.74% at $76.11 per barrel.
सर नजर डाला जाए सराफा बाजार पर. सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट दर्ज हुई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 1047 रुपए के नुकसान से 72,084 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा. चांदी भी 2184 रुपए की गिरावट से 91,632 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई. वैश्विक बाजारों में सोना गिरावट से $2,353.50 प्रति औंस के स्तर पर रहा. चांदी भी नुकसान से $30.47 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई. ये चूंकि बड़ा पसंदीदा और खासतौर पर जिस तरह से भारतीयों के मन में सोने के प्रति ललक रहती है, सोने और चांदी में शायद ये होड़ लगी हुई है कि कौन 1 लाख पहले के स्तर को पहले छूता है. क्या आज की स्थिति में अगर हम देखें तो चूंकि शेयर बाजार ने छलांग लगाई है तो ये उसका फौरी असर है कि सराफा बाजार में कहीं नरमी आई है, या अभी दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग चलेंगी. और जो वैश्विक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 2350 के आसपास डॉलर के आसपास सोना वैश्विक बाजार में बना हुआ है, लेकिन चांदी $30 को क्रॉस कर चुकी है. हमने जब चर्चा करनी शुरू करी थी तकरीबन $22 थी.
बिल्कुल अमित, तो देखिए बिल्कुल, तो पहली बात तो यह कि शेयर बाजार और सराफा बाजार का कोई ऐसा लिंक नहीं है. कोई छोटा मोटा आपका आप पैटर्न आप ढूंढने तो बात अलग है, लेकिन कोई पैसे का या वहां पर कोई फंड फ्लोज नहीं होते, उनका इंडिपेंडेंट एक पैटर्न रहता है. दूसरी चीज ये कि जो चांदी में और सोने में रेस लगी हुई थी तो उसका एक अनुपात, एक रेशो है सिल्वर और गोल्ड का. पिछले दिनों वो रेशो जो इस जमाने में 95-96 होती थी, यानी चांदी बहुत सस्ती होती थी, चांदी ने वो रेशो घट करके 74 टाइम्स आई. मतलब तो मतलब गोल्ड चांदी की कीमतें ज्यादा बढ़ी थी. पर मेरा मानना यह है कि जो अभी जो रेशो चल रही है, ये 70 के आसपास रेशो चल रही है, ये यहां थोड़े दिन रुकेगी, थोड़ा मेंटेन करेगी, और उसके बाद हिस्टोरिकली तो ये 50 तक भी रही है, यानी चांदी की कीमतें बहुत ऊपर थी विजा वी गोल्ड. पर फिलहाल ये रेशो जो है वो 70 टाइम्स है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी यहां पर रुक करके फिर हम शायद चांदी में, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अच्छी तेजी देखेंगे.
क्या क्या वजह क्या है कि चांदी में क्या औद्योगिक उसका उपयोग ज्यादा बढ़ गया है या कोई और?
नहीं, ज्यादातर बिकॉज ऑफ यूज इन इंडस्ट्री, ये इसके ज्यादा कंजम्पशन बढ़ी है और माइनिंग उसकी रिलेटिवली कम है, तो वहां पर अब कंजम्पशन की वजह से बढ़ा.
और अगर हम सोने में देखें तो सोने ने भी लगातार अपने स्तर को जो है मजबूत बनाए रखा है.
देखिए सोने की जो तेजी है वो तो जो सेंट्रल बैंक ने बाइंग करी है, चाइना के सेंट्रल बैंक ने बहुत बड़ी बाइंग करी गोल्ड की, भारत ने भी बाइंग करी है, आरबीआई ने भी, तो जो गवर्नमेंट्स है वो करेंसी डॉलर से वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो गोल्ड खरीद रहे हैं, तो वहां पर गोल्ड में तेजी थी.
फिलहाल मतलब सोने और चांदी में निवेशकों को अभी मालामाल होने के पूरे,
मुझे लगता है कि इससे मजबूती अभी बनी रहेगी आने वाले कुछ समय.
जी पुनीत, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा और हमारे निवेशकों को सरल शब्दों में सब चीजें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर.
सेंसेक्स हिट्स फ्रेश ऑल टाइम हाई, सर्जेस नियरली 1700 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस एट 23,290. आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर द 8th टाइम इन अ रो. and oil prices steady on OPEC plus reassurances still set for third weekly loss. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do remember to join us then. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar. Market Mantra.